नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। हेड फर्स्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर राजू गांधी, मार्क रिचर्ड्स और नील फोर्ड की आरंभिक स्तर की तकनीकी पुस्तक है। यह ओरेली मीडिया द्वारा 2024 में प्रकाशित हुई और विशेष रूप से उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बनाई गई है जो कोड लिखने से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम के डिजाइन संबंधी निर्णय समझना चाहते हैं। पुस्तक का उद्देश्य किसी एक आर्किटेक्चरल शैली, भाषा या क्लाउड उत्पाद की सूची देना नहीं है। इसका केंद्र आर्किटेक्चरल थिंकिंग है, अर्थात व्यापारिक जरूरतों, तकनीकी सीमाओं, गुणवत्ता अपेक्षाओं और बदलाव की संभावना को साथ रखकर निर्णय लेना। हेड फर्स्ट श्रृंखला की शिक्षण शैली में दृश्य संकेत, छोटे अभ्यास, प्रश्न और समस्या आधारित व्याख्याएं शामिल होती है, इसलिए सामग्री पारंपरिक संदर्भ ग्रंथ की तुलना में अधिक संवादात्मक लगती है। लेखक आर्किटेक्ट की भूमिका को केवल सर्वोच्च तकनीकी पद नहीं मानते, बल्कि ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी के रूप में रखते हैं जो विकल्पों के बीच समझौते स्पष्ट करे, टीमों को दिशा दे और निर्णयों के परिणामों की जवाबदेही ले। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आर्किटेक्चरल थिंकिंग का अर्थ पूरे सिस्टम के परिणामों में सोचना। पुस्तक का मूल पाठ यह है कि आर्किटेक्चर कोई स्थिर चित्र, फोल्डरों की व्यवस्था या किसी प्रसिद्ध पैटर्न का नाम नहीं है। आर्किटेक्चरल थिंकिंग का मतलब है किसी निर्णय को उसके व्यापक परिणामों के साथ देखना। उदाहरण के लिए, किसी सुविधा को जल्दी जारी करने के लिए एक ही सेवा में जोड़ देना आरंभ में सरल हो सकता है, लेकिन भविष्य में बदलाव, परीक्षण, तैनाती और टीमों के समन्वय पर उसका असर अलग हो सकता है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं होता कि समाधान अभी काम करेगा या नहीं, प्रश्न यह भी होता है कि वह अपेक्षित लोड, सुरक्षा, विश्वसनीयता, रखरखाव और व्यावसायिक परिवर्तन के सामने कैसे व्यवहार करेगा। यह दृष्टि डेवलपर को स्थानीय कोड गुणवत्ता और सिस्टम स्तर की गुणवत्ता के अंतर को समझने में सहायता देती है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हर विकल्प में लाभ और कीमत दोनों होते हैं। बेहतर आर्किटेक्ट वह नहीं जो हर समस्या का एक निश्चित उत्तर बताए, बल्कि वह है जो संदर्भ के अनुसार उपयुक्त समझौता पहचान सके। इसीलिए तकनीकी निर्णयों को आवश्यकताओं, जोखिमों और भविष्य की अनिश्चितता से जोड़कर समझना पुस्तक की केंद्रीय उपयोगिता है। दूसरा, आर्किटेक्चर विशेषताओं के आधार पर गुणवत्ता अपेक्षाओं को पहचानना। सिस्टम की कार्यात्मक आवश्यकताएं बताती हैं कि उपयोगकर्ता क्या कर सकेगा, पर आर्किटेक्चर पर अक्सर वे अपेक्षाएं अधिक प्रभाव डालती हैं जो बताती है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। पुस्तक इन्हें आर्किटेक्चर विशेषताओं के रूप में समझने की दिशा देती है। प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी, उपलब्धता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, परीक्षण योग्यता और तैनाती की सहजता जैसे गुण अलग अलग प्राथमिकताएं ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अत्यंत कम विलंबता का लक्ष्य अतिरिक्त नेटवर्क परतों या दूरस्थ कॉलों को सीमित कर सकता है, जबकि उच्च उपलब्धता प्रतिकृति और विफलता से उबरने की व्यवस्था मांग सकती है। दोनों लक्ष्य उपयोगी हैं, पर उनका संयुक्त समाधान अधिक जटिल हो सकता है। पुस्तक की व्यावहारिक सीख यह है कि गुणवत्ता शब्दों को अस्पष्ट ना छोड़ा जाए। टीम को स्पष्ट करना चाहिए कि किस उपयोगकर्ता प्रवाह के लिए कौन सी अपेक्षा महत्वपूर्ण है और उसका स्वीकार्य स्तर क्या है। इससे डिजाइन चर्चा निजी पसंद या फैशन से हटकर प्रमाणित प्राथमिकताओं पर आती है। आर्किटेक्ट का काम सभी गुणों को अधिकतम करना नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण गुणों की रक्षा करते हुए अन्य प्रभावों को स्वीकार्य सीमा में रखना है। यही स्पष्टता अनावश्यक जटिलता को रोकती है। तीसरा, संरचना, घटक सीमाएं और संचार के प्रभावी विकल्प। पुस्तक सॉफ्टवेयर सिस्टम को केवल एक बड़े अनुप्रयोग के रूप में देखने के बजाय उसकी संरचना और सीमाओं पर विचार करने को प्रेरित करती है। घटकों, मॉड्यूलों, सेवाओं और उनके बीच संचार की सीमाएं तय करती है कि बदलाव कितना सीमित रहेगा, जिम्मेदारियां कितनी स्पष्ट होंगी और टीम कितनी स्वतंत्रता से काम कर सकेगी। बहुत अधिक जुड़ाव वाला डिजाइन छोटे परिवर्तन को भी कई जगहों तक फैला सकता है। इसके विपरीत, उचित सीमाएं बदलाव के प्रभाव को नियंत्रित कर सकती है, हालांकि वे अलग इंटरफेस, डेटा समन्वय और परिचालन निगरानी की लागत भी लाती है। इसलिए पुस्तक किसी एक शैली को सार्वभौमिक समाधान की तरह प्रस्तुत करने के बजाय संदर्भ देखने की आदत पर बल देती है। एक सरल मोनोलिथ कम टीम आकार और आरंभिक उत्पाद के लिए समझने व चलाने में आसान हो सकता है। अधिक वितरित संरचना स्वतंत्र तैनाती या अलग स्केलिंग की जरूरत में उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसमें नेटवर्क विफलता, डेटा स्थिरता और परिचालन जटिलता बढ़ती है। इस तुलना का उद्देश्य नामों को याद कराना नहीं है, उद्देश्य यह समझाना है कि संरचना संगठन, संचार और विकास की गति को प्रभावित करती है। अच्छी सीमा वही है जो वास्तविक जिम्मेदारियों और अपेक्षित परिवर्तन के अनुरूप हो। चौथा, तकनीकी निर्णयों में समझौते, जोखिम और निर्णय दर्ज करने की जरूरत। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में पूर्ण समाधान दुर्लभ होते हैं। पुस्तक यह समझ विकसित करती है कि निर्णयों को लाभ, हानि और जोखिम के साथ देखा जाए। किसी नई तकनीक से विकास की गति बढ़ सकती है, लेकिन टीम की अपरिचितता उत्पादन जोखिम बढ़ा सकती है। किसी साझा डेटाबेस से रिपोर्टिंग सरल हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र बदलाव कठिन हो सकते हैं। इसी कारण केवल लोकप्रिय तकनीक या व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है। निर्णय के पीछे की वजह, विकल्प और स्वीकार किए गए परिणाम स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा रिकॉर्ड भविष्य की टीमों को यह समझने देता है कि कोई सीमा गलती से नहीं, बल्कि उस समय की प्राथमिकताओं के कारण बनाई गई थी। यह अभ्यास बदलाव होने पर निर्णय को दोबारा जांचने में भी मदद करता है। पुस्तक आर्किटेक्ट की जवाबदेही को इसी पारदर्शिता से जोड़ती है। आर्किटेक्ट को अनिश्चितता छिपाने के बजाय जोखिमों को सामने लाना, आवश्यक जांच कराना और टीम के साथ संवाद करना चाहिए। छोटे प्रयोग, प्रोटोटाइप और क्रमिक सत्यापन तब विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जब प्रदर्शन, एकीकरण या संचालन संबंधी अनुमान अनिश्चित हों। इस प्रकार निर्णय लेना एक बार की डिजाइन गतिविधि नहीं, सीखने और सुधारने की सतत प्रक्रिया बनता है। अंत में आर्किटेक्ट की भूमिका, तकनीकी नेतृत्व और टीम के साथ संवाद। पुस्तक आर्किटेक्ट को उस व्यक्ति के रूप में रखती है जो तकनीकी दिशा और व्यावसायिक संदर्भ के बीच पुल बनाता है। यह भूमिका केवल आरेख बनाने या नियम घोषित करने तक सीमित नहीं है। आर्किटेक्ट को डेवलपर्स की रोजमर्रा की बाधाएं समझनी होती हैं। हितधारकों से प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होती है और ऐसे निर्णय करने होते हैं जिन्हें टीम लागू कर सके। इसलिए संवाद आर्किटेक्चर का सहायक काम नहीं, उसका मुख्य भाग है। यदि किसी निर्णय की वजह स्पष्ट नहीं है तो टीम उसे यांत्रिक नियम मान सकती है और वास्तविक परिस्थिति में गलत तरीके से लागू कर सकती है। इसके विपरीत गुणवत्ता अपेक्षाओं, सीमाओं और समझौतों पर खुली चर्चा बेहतर तकनीकी स्वामित्व पैदा करती है। पुस्तक आरंभिक पाठक को यह भी संकेत देती है कि प्रभावी आर्किटेक्ट हर विषय का अकेला विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता। वह सही प्रश्न पूछता है, विविध विशेषज्ञता का उपयोग करता है और निर्णयों को लागू होने के बाद भी देखता है। तकनीकी नेतृत्व का अर्थ नियंत्रण जमा करना नहीं, बल्कि टीम को सुरक्षित और स्पष्ट निर्णय लेने योग्य बनाना है। यह दृष्टि विशेष रूप से उन डेवलपर्स के लिए उपयोगी है जो वरिष्ठता के साथ डिजाइन चर्चा में अधिक जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। निष्कर्ष में, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर उन डेवलपर्स, तकनीकी लीडो और नए आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की शब्दावली के साथ निर्णय लेने की बुनियादी आदत विकसित करनी है। जिन पाठकों ने अभी तक आर्किटेक्चर को मुख्यतः माइक्रोसर्विसेज, क्लाउड या डिजाइन पैटर्न की सूची के रूप में देखा है, उन्हें यह पुस्तक अधिक उपयोगी संदर्भ देती है। यह दिखाती है कि संरचना का चुनाव गुणवत्ता अपेक्षाओं, टीम की क्षमता, संचालन की जरूरतों और व्यावसायिक प्राथमिकताओं से अलग नहीं किया जा सकता। अनुभवी आर्किटेक्ट्स को सामग्री अपेक्षाकृत परिचयात्मक लग सकती है, पर वे इसे नई टीमों के साथ साझा भाषा बनाने या अपने मूल सिद्धांतों को दोहराने के लिए उपयोग कर सकते हैं। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका भेद इसकी शिक्षण पद्धति और प्रवेश स्तर की स्पष्टता है। यह भारी सिद्धांत अत्यधिक औपचारिक मॉडल या किसी एक तकनीकी फैशन से आरंभ नहीं करती। इसके बजाय यह पाठक को समस्याओं पर विचार करने, विकल्पों की तुलना करने और हर निर्णय की कीमत पहचानने के लिए प्रेरित करती है। मार्क रिचर्ड्स और नील फोर्ड के आर्किटेक्चर विषयक अनुभव तथा राजू गांधी के व्यावहारिक विकास दृष्टिकोण का संयोजन इसे उपयोगी बनाता है। इसका व्यावहारिक लाभ तत्काल समाधान नकल करना नहीं, बल्कि नई परिस्थितियों में बेहतर प्रश्न पूछना और अधिक जिम्मेदार तकनीकी निर्णय लेना है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं राजू गांधी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।